الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تجربات کی دنیا لے کر حاضر ہیں اور بڑا مشہور جملہ ہے کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہو تو کہیں کہیں ضد بچپنا کہلاتی ہے اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقصد ہے اس کا ضدی آدمی ہے پورا کرے گا تو کہیں ضدی ہونا یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے اور خوبی میں شمار کیا جاتا ہے یعنی اپنے عزم میں بڑا پکا ہے ایک بار طے کر لے تو کر لے ابھی کر کے دم لے گا اس طرح کی چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں اب یہ جو لفظ ہے ضدی ہونا یہ کہاں درست ہے کہاں درست نہیں ہے اس پر اللہ نے چاہا تو آج ہم گفتگو کریں گے اور ایسی کوئی ضد نہیں ہے کہ ضد کو ہی پکڑ کر بیٹھے رہیں گے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویرائٹی نکل آئے میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں اب دیکھیں انہوں نے ضد پر کیا تیاری کی ہوئی ہے آپ ضد کو کیسے دیکھتے ہیں آپ ضد کو کیسے دیکھتے ہیں مہروز بھائی آپ کیسے دیکھتے ہیں اور آپ بتائیے کہ ضد کو آپ کس انداز پہ دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں ضد آپ کو لگتا ہے کہ فائدہ مند ہے اور کہاں کہاں ضد انسان کے کردار کو اور دیگر اس کی جو سراؤنڈنگ ہے اسے ڈیمیج کرتی ہے تو آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین جیسا کہ آپ نے تمہید میں ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک میننگ پازیٹیو بھی ہے لیکن وہ مغلوب معنی ہے کیونکہ اردو کے اندر لفظ ضد جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا غالب معنی نیگیٹو ہی لیا جاتا ہے تو اسی کو میں تھوڑا سا ایکسپلور کروں گا ظاہر پازیٹیوز کی ایک الگ دنیا ہوگی ایک الگ مثالیں ہوں گی چیزیں ہوں گی لیکن جب اردو زبان کے اندر کیونکہ عربی کے اندر یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور زیادہ تر یہ اپوزٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے الاشیاء تعرف بأضدادها تو اضداد جمع ہے ضدن کی یا ضدن کی تو اشیاء جو ہیں وہ اپنے برعکس سے پہچانی جاتی ہیں تو عربی کے اندر اس کا استعمال جدا ہے چونکہ ہم اردو میں سلسلہ کر رہے ہیں اور اردو میں لفظ ضد جب مطلقاً بولا جائے گا تو اس کا جو غالب اور ذہن کی طرف آنے والا معنی ہے وہ نیگیٹو ہے اس کو دیکھنے کے بہت سارے انداز ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے ایک جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر شخص اپنے اعتبار سے غور کرے تو اس سے بچنے میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور اس کی اصل کو جانچنے میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں ضدی ہوں کیونکہ جب تک مجھے اپنے مرض کی معلومات نہیں ہوں گی تو میں تو اپنے آپ کو درست سمجھوں گا
یہاں ضد کو ار جانے پر نہیں ماننا پہ لیں گے کہ کسی بات پر اپنی کسی سوچ پر یا کسی اس پر اڑ جانا کیونکہ جو آپ نے عربی کا جو محاورہ بیان کیا
جی
اور یہ کئی جگہ پر اصول میں بھی لیا جاتا ہے تو یہ اس کا جو معنی بنے گا وہ برعکس کے نہیں بنے گا کہ اس کا جو اپوزٹ ہے
جی
ایک تو ضد ہے جس پہ اڑ جانا ہے جو شاید ہمارا موضوع
یہی
اڑ جانے پر ہے
جی جی
اور ایک ہے کہ سفید کے برعکس کالا تو یہ ایک الگ ہے سردی کے ٹھنڈ کے برعکس وہ گرمی تو یہ جو اڑ جانا ہے اڑی کہتے ہیں آیا بڑا اڑی باز ہے مانتا ہی نہیں جس کو کہتا ہے مانتا ہی نہیں ہے اپنی غلطی نہ ماننا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی غلطی نہیں مانتے یہ ضد ان معنی میں آئے
ہاں جی اسی معنی میں ہے اور اڑ جانا illogically بلا وجہ یعنی اڑنا بلا وجہ اگر یہی اڑنا लॉजिकल हो और दुरुस्त हो,
हाँ, गलती है नहीं तो मैं क्यों मानूं,
तो मैं क्यों मानूं, तो वो अड़ना फिर वो पॉजिटिव में चला जाएगा।
लेकिन अब एक आदमी बोले मेरी गलती नहीं है, गलती होने के बावजूद तो भी ये थोड़ा मसला तो हो जाता होगा।
हाँ जी, वही वही मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले तो मुझे पता हो कि मैं तबीयतन कैसा हूं, और ये बताएगा मुझे मेरा साथ वाला, मेरा सीनियर, मेरा खैरखा या मेरे जो अतराफ में लोग हैं, क्योंकि आपकी एक अपनी तबीयत है, मेरी एक अपनी तबीयत है, और इंसान की फितरत है कि वो अपनी तबीयत का असीर होता है और उसको वो दुरुस्त ही ख्याल कर रहा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं अपनी तबीयत को नेगेटिव शुमार करूं, क्योंकि वो तो मेरा हिस्सा है, मेरी पर्सनैलिटी है। फिर जब आप इसकी पहचान कर लेते हैं तो जिद करना, ये अपने आप को तबाह करना और बहुत बड़े नुकसान का बायस बनाने का एक अमल है। इसको मैं यूं समझता हूं कि जो जिद करता है, जैसे अड़ जाता है, तो वो अल्लाह पाक की इस इतनी बड़ी कायनात की जो डाइवर्सिटी है, जो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लिमिट कर देता है। मैं चंद मिसालों से इसको मजीद इलेबोरेट करना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर मेरी जिद है कि मैंने नाश्ते में अंडा पराठा ही खाना है, दैट मीन्स कि मैंने उसके अलावा जो हजारों ऑप्शंस हैं उसको अपने लिए बंद कर दिया। मेरी जिद है।
या आपने जिद थी या ख्वाहिश थी?
नहीं, अव्वलन ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश पर अड़ जाना जिद हो जाएगा।
ख्वाहिश को आपने जिद का लिबास पहना दिया।
हाँ जी,
क्या शान है आपकी भाई।
अच्छा, मेरी जिद है कि मैंने आप ही के साथ काम करना है।
अच्छा,
मैंने फुलां के साथ काम नहीं करना, तो अव्वलन ख्वाहिश है, लेकिन मैं इस पर अड़ गया तो ये मेरी जिद हो गई। तो अगर मैंने सिर्फ आपके साथ काम करने पर जिद पकड़ ली, तो इसका मतलब है कायनात में जो हजारों लोग हैं उनको मैंने माइनस कर दिया। बाज लोग होते हैं वो अपनी किसी बड़ी छोटी सी चीज के अंदर फंस के रह जाते हैं। जैसे उनको कहो कि भाई ये काम आप इस तरीके से कर लो, डिपार्टमेंट चेंज कर लो या अपने लिबास को तब्दील कर लो, तो नहीं करते। उनकी जिद होती है, तबीयत के अंदर होती है। इसी तरह बाज बिरादरियां हैं कि जिनकी ये जिद है कि हमने रिश्ता अपनी बिरादरी में करना है। अब अगर बिरादरी में हजार लड़कियां हैं और आप इस जिद पर हैं कि मुझे इसी में करना है, तो कायनात में तो लाखों करोड़ों लड़कियां हैं। तो गोया कि आप अपने आप को जिद पर जब आप अड़ जाते हैं, तो आप उसके बरअक्स को और उससे बहुत बड़ी जो चीजें हैं उससे अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारक में और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में हमें इसकी रहनुमाई मिलती है। और इसका एक बहुत बड़ा वाकया जो सरदर जहन में आता है, वो सुलह हुदैबिया का है। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अपनी एक शान का इजहार फरमाया कि पहला जो इरादा था कि हम उमरा करेंगे, लेकिन हालात जब तब्दील हुए तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इरादे को तब्दील फरमाया और
सुलह का रास्ता इख्तियार फरमाया।
तो इसीलिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस अमल और अल्लाह पाक की जो रिजा थी उसमें यह बरकत हुई कि बहुत बड़ी कामयाबी नसीब हुई।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, असद भाई, आपकी शान ये है कि आप के मुतालिक रिवायत में आता है कि जब दो मामला पेश आते तो आप आसान को तरजीह दिया करते थे, आसान इख्तियार फरमाते थे। यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है। तो वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, इसमें गोया कि हमें एक ये नज़र आता है चीज़ कि आप अपनी तबीयत में एक फ्लेक्सिबिलिटी इख्तियार फरमाते थे कि चीज़ को यूँ नहीं तो चलो हम यूँ कर लेते हैं।
बल्कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में ये बतौर ख़ास एक वस्फ भी बयान किया गया कि आप सहाबे कराम अली रिदवान के दरमियान बड़े नरम और आसान रहा करते थे। यानी कि सहाबे कराम को अर्ज़ करना होता तो अर्ज़ कर लेते, सहाबे कराम कहीं ले जाने के लिए अर्ज़ करते तो आप तशरीफ़ ले जाते, सहाबे कराम अगर अपनी राय का इजहार करते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमाते। इसी तरह जिहाद की अगर हम सूरतों को देखते हैं तो कभी शहर के अंदर रह के दिफा किया, कभी शहर से बाहर जाकर दिफा किया, कभी दुश्मनों के पास जाकर जंग का सिलसिला हुआ। तो यूं देखें और दुनिया के हालात और वाकयात को देखें तो हमेशा वो शख्स कामयाब हुआ और हर वो शख्स बड़ा काम करने में कामयाब हुआ जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी।
एक ये हो सकता है समझाने के लिए बयान किया गया कि एक साहब अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे, चलते चलते गाड़ी में सामने से इतना बड़ा ट्रालर आ रहा था, और वो जो साहब थे वो गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ट्रालर जान को आ रहा है आ रहा है, ड्राइवर हिलने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल ट्रालर जो था ना इतना बड़ा, वो जान को आ गया, अब था कि अब ये गई गाड़ी। तो जो साहब थे जिसकी गाड़ी थी, जो मालिक थे, उसने स्टीयरिंग को यूं करके गाड़ी कच्चे में उतार दी और उसको कहा कि भाई तू क्या कर रहा था ये, और क्या हुआ? अरे इतना बड़ा ट्रालर नजर नहीं है। बोला मेरा थोड़ी कसूर है, वो गलत आ रहा था। सेठ ने कहा कि अगर ये लचक मुझ में ना होती तो आज हम दोनों किसी और ही जगह होते, कच्चे में ना होते। तो ये जो तबीयत के अंदर जो होता है ना भाई, वो गलत है, मैं क्या करूँ? तो टकराना टकराना था, और ट्रायलर से टकराने के बाद जो होना था वो होना था। तो तबीयत का कई जगहों पर, ना कि हर जगह पर, फ्लेक्सिबल होना ये मुफीद है। हाँ, जहाँ अकायद की बात है, नज़रियात की बात है, उसूलों की बात है, और इस तरह के उसूल के जिनका ताल्लुक हमारे दीन और ईमान के साथ है, वो टॉपिक जुदा होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात किसी ऐसे मौजू को लेते हैं तो कुछ चीज़ें गुड वुड कर दी जाती हैं, तो इसको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए, वरना किसी ट्रालर से टकरा गए ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। नुसरत भाई, आप कैसे देखते हैं ज़िद को?
भाई सब, सबसे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना पसंद करूंगा, क्योंकि
अरे वाह,
मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, तो तकरीबन 23 ईयर्स हो गए मुझे, 23 साल। ये तो एक लोग देख ही रहे हैं कई सालों से मुझे, मगर आज तक जो मेरा सोशल लाइफ मेरी है, 6 साल हो गए मुझे जो एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, हमारी कम्युनिटी में भी मैं वर्क कर रहा हूँ, जो सोशल वर्क होते हैं जिस तरह, तो कम्युनिटी में हमारी कैबिनेट है तो उसमें मैं जिम्मेदार भी हूँ। इस तरह सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा आते रहते हैं अक्सर, मैं उनमें पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस तरह हमें जाहिर सी बात है, हम जिम्मेदारान हैं तो हमें इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती रहती हैं, और अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती है तो वो मियां बीवी के मामलात में, तो ये ज़्यादा इश्यूज इस तरह के आते हैं। तो एक अभी एक हाल ही में एक इशू हुआ था, अब मतलब बात इतनी बड़ी नहीं थी, जो आपस में मियाँ बीवी का कुछ मामला हुआ, तो उनकी वाइफ जो है वो घर चली गई, अम्मी क्या, अब उनके दो बच्चे भी हैं, और अब वो शौहर खुद, उन्होंने भी गुस्से में ना, अब वो जाने दिया, अब ये भी गुस्से में उनके पास नहीं जा रहे उनको लेने के लिए। अब इनकी ज़िद, उधर उनकी ज़िद है कि भाई मैं नहीं आऊँगी, इधर इनकी ज़िद है कि अब मैं लेने नहीं जाऊंगा।
आना तो तुझे पड़ेगा,
अब खुद ही आएंगे, वो खुद से गई है तो अब खुद ही लेने, मतलब मैं लेने नहीं जाऊँ, खुद ही चाहे। अच्छा, इसमें ये तो पॉइंट्स हैं। अब वो दो बच्चे बेचारे, तकरीबन 1 3 साल का, 1 5 साल, एक बेटी एक बेटा, अब वो दोनों वो छोड़ के चली गई ना, तो भाई मैं जा तो रही हूँ, पता चलेगा, तो वो बच्चे भी छोड़ के चली गई। मुसालती कमेटी जब वो गए लोग, उनको बिठा के मुसालती कमेटी ने बात की, भाई ये इशू है आप लोगों की तरफ से, हमें लड़की वालों की तरफ से आया है तो हम आपके पास आए कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मसले को हल करें। इतनी बड़ी बात नहीं थी, जिसपे थोड़ी सी उलझन ही, वो जाहिर सी बात है वो चली गई है, अब इस मसले को हल तो करना है, नहीं करना। अब वो माँ बाप जो है वो अलग एक जिद पे अड़े हैं, खुद से गई है तो खुद से आएगी, हम क्यों लेने जाएं उसे, हम तो नहीं जाएंगे, ना ही हमारा बेटा जाएगा।
आगे क्या हुआ, लड़की का क्या हुआ?
लड़की को फिर बाद में आई,
दोनों की जिद में गलत कौन था?
लड़की की गलती थी ज्यादातर,
लड़की की गलती थी।
जब मुसालती कमेटी ने प्रॉब्लम देखी तो वो लड़की की थी।
कई घर जो टूटते हैं हमारे यहाँ, उनकी एक वजह यही जिद पाई जाती है, या तो लड़की जिद करती है, लड़का जिद करता है, या दोनों में से किसी एक के वालिदैन जिद पकड़ लेते हैं। ये जो हालात अभी हमारे इस्लाम भाई ने जिक्र किए हैं, यकीनन ये भी एक जिद का नतीजा होता है। इसमें अगर आप अपने अंदर कोई तब्दीली लाना चाहते हैं ना, तो आपको उन बच्चों को देखना होगा जो बच्चे आप दोनों के दरमियान में हैं। क्योंकि जब घर टूटता है तो जो सबसे ज्यादा जो शे उजड़ती है ना, उसका नाम औलाद है, वो उजड़ जाती है। क्योंकि घर टूटने के बाद आदमी भी दूसरी शादी कर लेता है, औरत की भी दूसरी शादी कर दी जाती है, और फिर जो इन दोनों, इन बच्चों के दरमियान जो मसाइल पैदा होते हैं ना, वो बयान से बाहर है। लिहाजा یہاں میری عرض یہی ہے کہ اگر بڑوں کا اس میں کوئی کردار ادا ہو سکتا ہے تو وہ ضد سے بچیں, اور شوہر اگر غور کرے, کیونکہ اگر شوہر کے ہاتھ میں اختیارات ہے تو اس کو بردباری بھی دی گئی ہے, عورت کے مقابلے میں زیادہ بردباری دی گئی ہے, اس کو زیادہ حلم دیا گیا ہے, اسے زیادہ برداشت دیا گیا ہے. اسے چاہیے کہ اپنی ان خوبیوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے. مفتی احمد یاخا نعیمی علیہ الرحمٰن نے یہاں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شوہر غصے میں آ کر اپنی بیوی کو کہتا ہے نا اپنی ماں کے گھر جا, وہ اصل نادان ہے. کیونکہ عورت کی اصلاح آپ اپنے گھر میں رکھ کر تو کر سکتے ہیں, اس کی ماں کے گھر پہ بھیج کے نہیں کر سکتے. اب جب آپ اپنی بیوی کو کہتے ہیں نا اپنی ماں کے گھر جا, تو بیوی بھی تنگ آ گئی ہوتی, کہتے جب اتنی بات مانی نہیں ہے آپ کی تو چلو ایک بات تو مان ہی لیتی ہوں, تو وہ بھی اطاعت کرتی ہوئی فرما برداری کا مظاہرہ کرتی ہوئی گیٹ پر ہی کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ بس میں تو چلی اپنے ماں باپ کے گھر پر. تو یہ جتنے فاصلے بڑھتے ہیں نا, کہتے ہیں نا نظروں سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا, وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا. تو یہ جو ہم نگاہوں سے دور کر دیتے ہیں نا, پھر بیچ میں اتنی عوامل آ جاتے ہیں, پھر اتنی باتیں آ جاتی ہیں اور دونوں کو بات کرنے کا موقع نہیں. حالانکہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں, آپ دونوں کو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے, نہ اس کے ماں باپ نہ آپ کے ماں باپ, کوئی بھی ماں باپ یا کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی, کیونکہ آپ کا نکاح موجود ہے, آپ میاں بیوی ہیں, آپ دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. فون اٹھائیے بات کیجئے اور فوراً کہہ دیجئے غلطی ہو, اگر غلطی ہے تو کہہ دے غلطی ہو گئی, غلطی نہیں بھی ہے تب بھی جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر, جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ, جو تجھ سے ظلم کرے اسے معاف کر دے, جنت کی بشارت پا لے. تو یہاں ضد کی وجہ سے جو گھر ٹوٹتے ہیں نا, یہ ہم نے اس ٹاپک کو یہاں لینے کی کوشش کی ہے. ضد نہ کریں اور فلیکسیبل رہیں, نرمی اختیار کریں اور درگزر کرنا اختیار کریں. مہروز بھائی یہ الگ ٹاپک لیا ہمارے اسد مدنی نے, ہمارے نصرت بھائی نے گھر گرہستی کا موضوع لیا, آپ ضد کو کیسے دیکھتے, کہاں دیکھتے, کوئی ضد کے فوائد ووائد بھی ہیں یا نہیں ہیں؟
بالکل فوائد بھی ہیں, لیکن اسے ضد نہیں کہا جاتا. ضد کو جب پازیٹیولی یوز ہوتا ہے تو پھر اسے استقامت اور مستقل مزاجی کہا جاتا ہے, اس کے لیے ڈفرینٹ لفظ یوز ہوتے ہیں. ضد تو نگیٹو ہی یوز ہوتا ہے, اور اس کی نحوست اتنی کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں کافروں کے اسلام قبول نہ کرنے کی ایک وجہ ان کی ضد اور ہٹ دھرمی کو قرار دیا گیا ہے. تو اب یہ ضد جو ہے دنیا میں جو نقصان پہنچائے گی وہ تو پہنچائے گی, آخرت کا اتنا بڑا نقصان جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ یہ جو ایمان نہیں لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہوئے, اپنے درمیان دیکھتے ہوئے, وہی اترتی ہوئی دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے ایمان نہیں لائے, تو اس کی ایک وجہ ضد اور ہٹ دھرمی ہے. تو اس کے یوں فوائد تو بظاہر نہیں ہیں, کوئی اکا دکا کھینچ تان کے لے آئے تو پھر وہ مستقل مزاجی اور استقامت ہی کے عنوان پہ جچتے ہوں گے, ضد کے عنوان پہ جچتے اور سوٹ نہیں کرتے. ضد جو ہے حسب نقصان دہ ہی ہے. اور یہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ جیسے نصرت بھائی نے بیان کی وجہ زوجین کے تعلق کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے ضد کو بیان کیا, یہاں پہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے کیونکہ ہم ضد پہ گفتگو کر رہے ہیں, کہ بعض اوقات فرد ضدی ہوتا نہیں ہے یا اتنا ضدی نہیں ہوتا جتنے اس کے آس پاس کے مختلف عوامل اور افراد اسے ضدی بنا دیتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, بچوں سے مثال دیتا ہوں, کہ اگر والدین بچے کے سامنے یہ کہتے ہیں نہیں میرا بچہ بہت ضدی ہے یہ نہیں مانے گا, تو نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنا ذہن بنا لیتا ہے ہاں میں ضدی ہوں میں نہیں مانوں گا. اور اگر والدین بچے کے سامنے کہتے ہیں نہیں میرا بچہ ضدی نہیں ہے میری بات مان لیتا ہے یا یوں کر لیتا ہے, تو عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ بچے پھر بات مان لیتے ہیں. اور یہی ڈائیلاگز جو ہیں وہ چھوٹی کلاس کے بچوں کے ساتھ ٹیچرز بھی اپلائی کرتے ہیں کہ آپ اچھے بچے ہیں آپ بات مان لیتے ہیں تو بچے اچھے بن جاتے ہیں, اور اس بچے سے کہا جائے آپ اچھے بچے نہیں ہیں گندے بچے ہیں آپ بات نہیں مانتے تو پھر وہ کہتا ٹھیک ہے اب تو یہ بات بھی نہیں مانوں گا. تو ان چیزوں کو بھی اپنے پیش نظر رکھا جائے. اور کیونکہ میں نے بچوں کی بات کی ہے اور زوجین کی بھی میاں بیوی کی بھی بات ہوئی ہے, تو گھروں میں بعض اوقات ضد اس اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ جو اولاد ہے وہ کس سمت پہ چلے گی, اس کی فیوچر پلاننگ, اس کے ایتھکس اور اس کے جو کسٹمز ہوں گے وہ کیا ہوں گے. بعض اوقات ماں الگ سوچ رہی ہوتی ہے باپ अलग सोच रहा होता है, बिलखसूस एजुकेशन के हवाले से, जहाँ पे पढ़ने पढ़ाने का ज़्यादा रुझान होता है जिन वालदेन का कि अपने बच्चों को पढ़ाना है, अब पढ़ाने के एतबार से फील्ड कौन सी इख्तियार करनी है, तो इसमें बाज़ूकात ज़िद हो जाती है और इसमें भी नुकसान बच्चों का ही ज़्यादातर होता है। इस पर एक बड़ा प्यारा कह लीजिए तमसीली वाक़या बयान किया गया। एक बच्चे ने अपने उस्ताद से पूछा कि सर मुझे ये बताइए कि मैं कौन सी फील्ड इख्तियार करूँ। उमूमन ये होता है कि जब हमारा 8th क्लास हो रही होती है, इससे निकल रहे होते हैं, तो अब कोई आपको स्पेसिफिक मज़मून सिलेक्ट करना होता है कि आप साइंस लेंगे, कंप्यूटर साइंस लेंगे, या आर्ट्स लेंगे, या कॉमर्स लेंगे, जो एक्स वाई जी जो भी होते हैं। तो उसने पूछा अपने टीचर से कि सर मुझे ये बताइए मैं कौन सा टॉपिक लूँ, कौन सा मज़मून लूँ आगे पढ़ाई के लिए, किस में मैं आगे पढ़ूँ। तो टीचर ने पूछा कि तुम्हारा शौक क्या है। मैंने कहा कि ये तो डॉक्टर बनने का शौक, तो डॉक्टर बन जाओ। लेकिन अम्मी कहती है तुम्हें आलिम बनना, आलिम बन जाओ। लेकिन अब्बू कहते हैं इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन मेरे बहन भाई कहते हैं कि नहीं, हम सब जो हैं सीए कर रहे हैं, तो तुमने भी सीए करना। तो ये एक तमसीली वाक्या है। अब वो जो बच्चा जो अभी मैच्योरिटी के उस लेवल पर नहीं है कि बहुत सारी डिफरेंट राय के दरमियान इस तरीके से, जब इतने करीबी अफराद, इतने मैच्योर अफराद डिफरेंट राय दे रहे हों और मुख्तलिफ उसको वे में चलाना चाह रहे हों, तो वो फैसला नहीं कर पाता। बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ करके वो कहीं ना कहीं झुकाव डाल के, जहाँ से ज़्यादा चाहत मिलती है, जहाँ से ज़्यादा दिमाग मिलता है, वो फैसला कर लेता है। बाज़ औक़ात वो अपने मिजाज और अपनी मुवाफ़क़त के हट कर फैसला कर लेता है। मिसाल के तौर पर वो बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन कहा गया कि नहीं जी, हमारे तो पूरी फैमिली में इंजीनियर्स की फैमिली है, हमारी तो डॉक्टर कैसे बनेगा, या डॉक्टर्स की फैमिली है इंजीनियर कैसे बनेगा। वो अपनी पसंद और चॉइस के बरक्स कोई शोबा इख्तियार कर लेता है और फिर वहाँ पे वो एक एवरेज टाइप का या नाकाम टाइप का स्टूडेंट रहता है, और फिर प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है।
पेशन और प्रोफेशन में फर्क आ जाता
है, जी फर्क आ जाता है। तो अगर उसकी चॉइस देख ली जाए, उसकी रगबत देख ली जाए, उसका मिलान तबा देख लिया जाए, और आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये होता है, बड़े तालीमी इदारों में ये होता है कि वो चेक करते हैं कि आपका मिलान तबा है क्या,
काउंसलिंग होती है,
काउंसलिंग होती है। तो मेरा ख्याल इसमें बाज़ों का जो जिद लग जाती है और वाकईतन लग जाती है कि हमने ये करना है, हमने ये करना है, उसमें औलाद जो है वो परेशान हो रही होती है, और ये जिद का नतीजा फिर मुस्तकबिल में वालदेन को भी बहरहाल भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो जो भी जिद कर रहे हैं, वो अपने तौर पे जो जिद कर रहे हैं, वो बच्चे का ब्राइट फ्यूचर सोचकर ही कर रहे हैं जिद, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि इस ब्राइट फ्यूचर में सारी एनर्जी जो आनी
है। यहाँ कहीं कहीं वालदेन का एक्सपीरियंस भी तो लैक करता है।
बिल्कुल करता है सब, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा।
आज के दौर में जब आफ्टर द कोविड बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और उसे आई थिंक कई पेरेंट्स जो हैं उसको अब तक एब्जॉर्ब करने में इतने कामयाब नहीं हो सके, तो सम टाइम ये भी होता है कि वालिदैन जो है उनका एक्सपीरियंस लेक कर रहा होता है, या वालिदैन की डायरेक्शन जो है वो अपने ही एक जहन होता है कि ये भाई इसी तरह का होगा। तो मेरा ख्याल यहाँ पर पेरेंट्स को भी करंट जो सूरत हाल है इसके मुताबिक कुछ मुशावरत करनी चाहिए। मैं जैसे पेरेंट्स से दरख्वास्त करूँगा कि बाज़ वालिद, स्पेशली यहाँ पर वालिद बड़े डोमिनेट होते हैं, तो वालिद को, तमाम वालिद से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो इस तरह की सोच रखते हैं, कि दरख्वास्त है कि आप अपनी ही फील्ड में, अपने ही लोगों में, और उन्हीं के बच्चों के साथ, उन्हीं के बच्चों के ताल्लुक से आप एडवाइस ले लिया करें, सुनाइए आपके बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, आपको करंट सीनियरों का पता चलेगा। बाज़ों का वालिद साहब की जो ज़िंदगी होती है ना, वो एक ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक होती है, और इतना ज़्यादा वो सोशलाइज होते नहीं हैं, मगर एक जहन बना हुआ होता है कि यही करना है, जबकि उसका चलन ख़त्म हो चुका होता है, उसका ट्रेंड ख़त्म हो चुका होता है, या उसमें बाज़ों का स्कोप नहीं होता। तो ये जो भी गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ वो एक फ़र्ज इल्म और एक जो ज़रूरत की बातें या ज़रूरत की चीज़ें जो अल्लाह और उसके रसूल ने एक मुसलमान के ऊपर लाजिम व फ़र्ज़ की होती हैं, मैं उसके अलावा पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो कोई च्वाइस है ही नहीं, उसमें तो एज पर एज वो करना ही करना है, जो एक बीइंग अ मुस्लिम एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक अगर फ्यूचर के तौर पर जहाँ हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वहाँ पर मैं वालिदैन के लिए ये दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि ये एक जनरेशन गैप की सूरत इख्तियार कर जाता है कि बच्चे को डिस्कस कर रहे होते हैं और हम मतलब कि उनकी बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होते, लिहाजा वहाँ पर बच्चे जो है ना वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। आप बैठकर बात कीजिए, इनकी सुनिए और खुद भी इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है बेटा, मैं भी कुछ मालूम लेता हूँ। अब लॉक ना करें, कहीं भी बंद ना कर दें, उसके आगे दीवार खड़ी ना कर दें कि बस कह दिया ना, ये नहीं है, इसे ना करें। बस कह दिया, मैं अल्लाह पाक मेरे अमीरले सुनों को सलामत रखे। आप हमेशा एक बात इरशाद फरमाते, मैंने आज तक अपने बच्चों को हुक्म दिया ही नहीं है, जब भी दिया मशवरा दिया है ताकि ये कहीं भी अपने वालिद की नाफरमानी के मुर्तकिब ना हो। जबकि ऐसा बाज़ाहिर सूरत नहीं है, लेकिन ये आपकी एक कमाल दर्जे की एहतियात है। अब चूंकि मैं वालिद से बात कर रहा हूँ तो लिहाजा मैंने एक वालिद की ही एग्जाम्पल आपके सामने कोड की है। यही माँ का मामला होता है कि अपनी बेटियों के ताल्लुक से वो भी बाज़ औक़ात बड़ी वो डोमिनेट करती हैं और ऐसा अंदाज इख्तियार करती हैं। मैं ये वालिदैन को ज़िद्दी तौर पर मैं नहीं लूँगा, आप ज़िद करने में ये नहीं लूँगा, लेकिन अब फ्लेक्सिबल हो जाइए। अब अपने बच्चों की, अगर बच्चे गलत हैं तो इनकी गलत होने को इनके आगे एक्सप्लेन करें और दलाइल और एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करें। अदरवाइज आपको और आपकी फैमिली को खुद को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। बेटे बाहर निकलकर अपने दोस्तों में फिर आपको डिस्कस करेंगे, यार क्या करो वाले साहब मेरी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल पैदा ना होने दें कि फिर वो आपके ताल्लुक से बाहर डिस्कस करें, खुदा ना खास्ता गीबत और दीगर वो गुनाहों में मुबतला हो जाएं। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को के फ्यूचर के ताल्लुक से, अब आपसे ज़्यादा फ्यूचर बच्चों का कौन बेहतर ख्याल करेगा, तो अच्छा आप इनके टीचर से मशवरा करें, आप इनके पास स्पेस दें। बेटा तुम भी मजीद गौर कर लो, मशवरे कर लो, मुझे भी थोड़ा स्पेस दो बेटा, मैं भी आपके एडवाइस के ऊपर या आप जो करना चाहते हो उस पर मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। यकीन माने ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा, बच्चों की भी ये बहुत अच्छी गाइडेंस है कि आपके बच्चे भी कल वरना आपकी तरह अल्लाह ना करे जिद्दी हो गए ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और फिर ये चलता रहेगा। दुनिया में बहुत सारे बच्चों के जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो इसकी एक वजह ये भी होती है कि उनके पास आगे अंधेरा आ जाता है कि कोई सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये मैं थ्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये जो हालात और वाकयात है उसके मुताबिक एक आई ओपनिंग डिस्कशन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो काइंडली ये ज़रूर इसको गौर कीजिएगा और अगर खुदा ना खास्ता आपके नेचर के अंदर कोई स्ट्रिक्टनेस है, कोई इतनी सख्ती है, तो उसको मेहरबानी करके फ्लेक्सिबिलिटी में लाइए, लचक पैदा कीजिए। फाइनली ये आपकी अपनी औलाद है, इसको आपसे दूर मत होने दीजिएगा। और मैं औलाद से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि वालिदैन के एक्सपीरियंस को कभी भी इग्नोर ना किया करें। जो भी आपकी एज 20 साल 18 साल 22 साल की एज होगी और जिनसे आप बात कर रहे हैं ना वो 50 प्लस हैं, 55 प्लस हैं, समटाइम्स 60 प्लस होते हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो एज के साथ एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये जो किताबों में जो बुजुर्गों की इंपॉर्टेंस बयान की गई ना कि आगे चलने को बेअदबी करार दिया गया है और दीगर बुजुर्गों के हवाले से अहमियत बयान की गई, रिवायतों में भी है अकवाल में भी है, इसकी एक वजह यह बयान की गई है कि चूंकि उम्र में बड़े होते हैं लिहाजा इनकी अक्ल ज्यादा होती है, इनकी अक्ल ज्यादा होने की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस बयान की गई है। अहियाल उलूम में इमाम गजाली ने इसको नकल किया है। लिहाजा मेरी दरख्वास्त आपसे यही होगी कि अपने पेरेंट्स को भी इग्नोर ना करें, पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कई बातें ऐसी होती हैं जो पढ़े लिखे होने से बहुत आगे की होती हैं। दुनिया में कई पढ़े लिखे लोग फाइलें उठा उठा कर घूम रहे हैं, ठेंगा मिला इनको, कुछ भी नहीं मिलता। और कई ऐसे हैं जिनके पास जो अंगूठा लगाने वाले भी सही नहीं है और आप कह सकते हैं कि सक्सेस जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये इसको मैटर नहीं करती है, एक्सपीरियंस कुछ और शे है, एजुकेशन कुछ और शे है। आप इतनी एजुकेशन लेकर जॉब के लिए जाते हैं तो आपको पहला अल्फाज यही सुनने को मिलता है, तजर्बा क्या है आपको, तो आप कहते हैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं, और एक्सपीरियंस वाले तो आपके घर में बैठे हुए हैं, होता ही नहीं होता आपके साथ। तो एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस तो है ना, और एक्सपीरियंस आपके घर के अंदर मौजूद है, इनको भी इग्नोर ना करें। आपकी तरफ बढ़ता हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जिद है क्या।
या अल्लाह, तकरीबन 35 मिनट हो गए हुजूर
जी,
चले समझाइए।
जिद आती कहाँ से है?
अच्छा,
जिद आएगी जब हमारे अंदर अना पैदा होगी, जब हमारे अंदर ऐसे एहसासात पैदा होंगे कि बस मैं ही हूं और सामने वाला जो है ना वो कुछ नहीं है, जब हमारे अंदर ये चीज पैदा हो जाएगी, चाहे वो बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, कुछ भी हो, फिर वो उसके अंदर अनानियत आने के बाद दूसरे को डिग्रेड करना शुरू करेगा, यहाँ तक कि दूसरे की बात उसे समझ नहीं आएगी। दिमाग के अंदर जब हमारे जहाँ एहसासात होते हैं,
अब तकबर को जिद के साथ लगा रहे हैं,
जिद आएगी तो तकबर बनेगा, तकबर आता है तो जिद आता है,
तकबर आएगी तो जिद आएगी, जिद के साथ तकबर,
दोनों एक दूसरे के साथ।
अच्छा,
कभी तकबर गालिब आएगा, कभी जिद गालिब आएगी।
अच्छा,
क्योंकि जब इंसान के एहसासात में खराबी आएगी, एहसासात उसके मुंतशिर हो जाएंगे, कोई उसकी सुनने वाला नहीं होगा, जब भी इंसान के अंदर जिद पैदा हो जाती है,
जिद पैदा होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा,
जिद के बाद चिड़चिड़ापन आएगा।
अच्छा, तकबर है, जिद है, चिड़चिड़ापन है।
जी जी हाँ, ये सारी चीजें जब हम देखते हैं ना कि तिब्बी नुक्ते नजर से, तो हमें वहां सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई नजर आती है। अच्छा, फिर हम जब देखते हैं कि इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर वो कुछ सोच रहा है और फिर सोचने के बाद उसको पूरा नहीं कर पाता, एहसास कमतरी में वो खामोश रहता है, फिर उसके अंदर सामने खौफ पैदा होता है, और फिर खौफ पैदा होने के बाद वो किसी की बात को कबूल नहीं करता है, यार मुझे, मैं ये करूँगा तो ऐसा नहीं हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। अब सामने वाला समझ रहा होता है यार अजीब पागल आदमी है, जिद्दी आदमी, इसको समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा, कर ही नहीं रहा है। दर हकीकत वो वहाँ जिद नहीं कर रहा होता, वो खौफ में मुब्तला होता है। अच्छा, फिर हम आगे चलते थोड़ा, जब किसी के अंदर जिद पैदा हो जाती है तो फिर उसके अंदर अकड़ आ जाती है, और जब अकड़ आती है तो यकीनन वो फिर अपने अच्छे कामों को भी खराब कर देता है। अब इसमें हम ये देखें कि इंसान जब जिद्दी हो रहा है, उसका कोई हल तो होगा ना। अगर उसके करीब वाले, उसके साथ वाले अफराद उसकी इस बात की रहनुमाई अगर ना करें कि तुम किस तरह गलत कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तो एक वक्त वो आता है कि वो उसके अंदर ऐसा बह जाता है कि वो एक अड़ियल इंसान बन जाता है, और फिर किसी भी सूरत में उसे कोई बात समझ नहीं आती।
मैं आपसे शुरू करने की कोशिश करता हूँ, अब मैं थोड़ा रिवर्स जा रहा हूँ, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है, अब खत्म, क्लोजिंग की तरफ है। आप एक शख्स को जानते हैं जो जिद्दी है, आप उसकी जिद, ये आप चारों से सवाल है, एक शख्स को आप जानते हैं कि वो जिद्दी है और तय है कि वो जिद्दी है, मानता नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है भैया इसको मनाना, एक चीज फैसला कर लेता है तो कर लेता है, फिर मानता नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर ये इरशाद फरमाइए कि इसकी जिद को दूर करने का आपके पास क्या हल है।
एक बच्चा है, हम देखते हैं कि बच्चे को कह रहे हैं कि बेटा ये खाना खा लो आप, बच्चा कह रहा नहीं मुझे, ये मिसाल के तौर पे बिरयानी है, मुझे बिरयानी खानी है, घर वाले कह रहे हैं बेटा आज आलू गोश्त पक्का ही खा लें आप, नहीं खा रहा मैं। अब सवाल ये पैदा होता है, माँ या बाप कह रहा है कि तुम्हें ये खाना है, बच्चा कह रहा है कि मैं नहीं खा रहा, अब जिद बच्चा कर रहा है कि माँ बाप कर रहे हैं, हमें इस तरफ भी तो तवज्जो देनी है ना। अब बच्चे को अगर हम आलू गोश्त नहीं खिला पा रहे तो फेल तो हम हो गए, क्यों फेल हो गए, इसलिए फेल हो गए कि हमने उसको सही तौर पे डील ही नहीं किया। अब बच्चे को जिद लगी हुई है, अब आपका काम है, आपका इम्तिहान है, माँ बाप का इम्तिहान है कि बच्चे को किस तरह लेकर चलते हैं।
जिद्दी है अगर कोई शख्स तो उसको अपनाइयत और खैरख्वाही जो है वो अगर उसको बावर करा दी जाए, जाहिर की जाए उसको किसी ना किसी तरीके से, जाहिर सी बात है जब वो जिद कर रहा है तो वो आपको अपना अपना नहीं मान रहा, अपने फेवर में नहीं समझ रहा। अगर ये समझाने में हम किसी तरीके से कामयाब हो जाएं कि हम आपका फायदा चाह रहे हैं, हम आपको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, आपको सहूलत में या आसानी में या राहत में लाना चाह रहे हैं, अगर किसी तरीके से ये हम उसके ऊपर जाहिर करने में कामयाब हो गए और उसने एडमिट कर लिया कि ये शख्स जो है ना मेरा खैरख्वाह है, ये मेरा फायदा देखना चाहता है, ये मेरी कामयाबी देखना चाहता है, ये मुझे राहत और सुकून में देखना चाहता है, तो फिर शायद, बल्कि फिर बहुत सारे मौके पर वो जिद छोड़ देता है और बात मान लेता है जब वो देखता है कि ये शख्स वाकई में मेरे साथ मुखलिस है।
मुस्तफा भाई,
ऐसा जो आपने जिद्दी शख्स के हवाले से कहा तो एक मैच्योर शख्स के हवाले से शायद आपने पॉइंट आउट करवाया, तो जो मैच्योर शख्स अगर जिद्दी होता है उसको मतलब बिल्कुल राह रास्त पिलाना या अपनी बात मनवाना इतना आसान नहीं होता, वो जिद्दी है, वो हर बात को नेगेटिव ही लेता है ज्यादातर, और फिर उसको मतलब तरीके से हम उसको प्यार मोहब्बत से उसको अपना काम निकलवा सकते हैं उससे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहीं और से बात करके, लेकिन अगर स्ट्रेट उस जिद्दी शख्स से कोई भी बात मनवाए तो मेरे ख्याल में मनवाना इतना आसान नहीं है, तो उसको बड़े प्यार मोहब्बत शफकत से उसी बात को अगर दूसरे अंदाज में करके उससे करवाया जाएगा तो वो शायद मान जाए।
सबसे पहले तो कोशिश ये होगी कि उसको न्यूट्रल किया जाए, क्योंकि जिस बात पे वो अड़ा हुआ है, अटका हुआ है, तो जब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा तो दूसरी जो तरफ है उसकी तरफ वो गौर नहीं करेगा। फिर उसके बाद जो वो सोच रहा है उसके एतबार से उसको उससे बड़ा या दूसरा फ़ायदा जो है वो बावर करवाना ये ज़रूरी है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर वो ज़ाहिर है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ज़िद का ताल्लुक दिमाग से ही है। जब तक उसका जहन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ इससे हटकर भी कोई चीज़ मेरे लिए मुफीद हो सकती है, तब तक वो उससे हटेगा नहीं। एक वाक्या है, उसको आप न्यूट्रलाइज करके डिसीजन करवाना इस पहलू में भी ले सकते हैं। एक शख्स था तो वो मानता नहीं था, अपनी गलती नहीं मानता था, और एक दफा आया और उसने जो कहना था वो कहा, और वो न कहने का था जो उसने कहा, और फुलां के बारे में, जिम्मेदार के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में सब, और वो था मतलब एक आजमाइश थी। तो मैंने उससे कहा कि आप जब इन सब के बारे में ये राय रखते हैं तो आपको तो इनके साथ काम नहीं करना चाहिए। अब वो जिद में तो था उस वक्त, कहने लगा हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो सब गलत हैं और यूं है वो है। मैंने कहा आप फिर इस्तीफा दे के कहीं और काम कर लें। उसने इस्तीफा लिखा, दे के चला गया। तो अब बाद में उसको समझ में आई कि मैं जो है वो क्या करके आया हूं। तो उसकी जो जिद थी कि भाई मैं तो बस मैं हूं और मैं कुछ और नहीं कर सकता और मैं ही दुरुस्त हूं और बाकी सारे गलत हैं, तो उसकी जहनी कैफियत के मुताबिक जब उससे कलाम किया गया तो जो मतलूबा नतीजा था वो हासिल हो गया। तो इसी तरह जैसा शख्स, जैसी उसकी जिद और जहां उसकी सुई अटकी हुई है। कई दफा देखा है आप कलाम करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट आप अपनी राय देने से पहले उसको न्यूट्रल करने पर वक्त सर्व करते हैं कि भाई ये जो सोच है तो आप इसको जो है ना थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं है तो मैं अगर करूंगा तो उसकी गोया के जिद में इजाफा करूंगा, यानी मैं अगर उसके इनकार पर लगा रहूंगा तो अपनी जिद में ज्यादा स्ट्रांग होगा।
जमीन जब तक नरम नहीं की जाएगी ना उसमें बीज नहीं डाला जा सकता। जमीन नरम करें फिर उसमें बीज डालें, फिर शफकत का मी बरसाएं, इंशाल्लाह ताला आपको आपकी तवक्कुआत की फसल मिल जाएगी। और इसमें आप दर्जा ब दर्जा चलें तो फायदा होगा। एक शागिर्द का जिद्दी होना, औलाद का जिद्दी होना, शोहर का जिद्दी होना, बीवी का जिद्दी होना, वालिदैन का जिद्दी होना, ये अलग अलग लोग अलग अलग कैटेगरी के अंदर पाए जाते हैं। सबकी सबकी एज डिफरेंस है, सबके तजर्बात अलग होते हैं और ये सारी चीज़ें जुदा होती हैं। जिस तरह डॉक्टर मरीज का मर्ज देखकर मेडिसिन देता है, इसी तरह आपको जिद करने वाले की जिद की कैफियत देखकर ही आपको अपनी हिकमत और मसलिहत का मुजाहरा करना पड़ेगा, वरना किसी की दवाई किसी को दे देंगे तो इसका उल्टा रिएक्शन भी आ जाता है। तो मौका महल देखकर, लेकिन जब भी किसी की जिद तोड़नी हो ना तो उसके लिए हिकमत की चाबी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात थी कि दरवाजा तोड़ना चाहते हो कि खोलना चाहते हो? तोड़ना है तो दस्तक दें, तोड़ना है तो लात मारें। अगर मारेंगे लात तो दरवाजा टूटेगा, खुलेगा नहीं, और अगर आप खोलना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नॉक करें, दस्तक दें, इंशाल्लाह ताला दरवाजा खुल जाएगा। जिद जिनके अंदर होती है उनमें कुछ लोग वो होते हैं जो इस बात में जिद्दी होते हैं कि मैं काम करूंगा तो यही करूंगा, वरना मैं कोई दूसरा काम ही नहीं करूंगा। मैं अपने ऐसे 2 से 3 या इससे कम या ज्यादा दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी जिद में गुजारी और अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस जिद में गुजार दिया कि करूंगा तो वही काम करूंगा वरना नहीं करूंगा। वो काम तो इनको मिला नहीं, अब वो काम करें जिनका शायद इन्होंने जिंदगी में तसव्वुर नहीं किया होगा क्योंकि एज निकल गई। अब एज निकल गई और अब इनको घर चलाना है, शादी करनी है या शादीशुदा है तो अब क्या करें। तो हमारे एक मेमनों में कहावत है, वारे ना वरियो हारे वरियो, यानी इसको यूं कहते हैं कि मनाया तो नहीं माना लेकिन जब सर पर पड़ी ना तो मान ही गया। तो जब कहा कि भाई मान जा तो नहीं माना, लेकिन जब कहते ना कि अब पछताए कि जो चिड़िया चुग गई खेत, यानी मैं पर्सनली जानता हूं और आज वो बिल्कुल इनकी जिंदगी में शायद इन्हें अब कोई प्लेजर या लज्जत भी नहीं मिल रही होगी क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जिद में गुजार दिया, करूंगा तो वही करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा। उसके लिए हाथ पैर सर जो कुछ मारना था ये मार चुके, लेकिन जब बंदा अपने आप को अल्लाह पाक की रजा के सुपुर्द करने को ही तरजीह नहीं देता कि मेरे रब ने जो मेरे लिए इख्तियार फरमाया मुझे उसी तरफ चलना चाहिए, क्योंकि जब आप तकदीर के पहाड़ से अपने इरादों को टकराते हैं ना तो इरादे तो पाश पाश हो जाएंगे, इस पहाड़ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लिहाजा अपने इरादों को फ्लेक्सिबल रखें और इस जिद में ना हो कि करूंगा तो वही काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, करूंगा तो उसी से शादी करूंगा वरना नहीं करूंगा, घर लूंगा तो वहीं लूंगा वरना नहीं लूंगा, जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा, खाऊंगा तो यही खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा, पहनूंगा तो यही पहनूंगा वरना जो पहना हुआ उसी में जिंदगी गुजारूंगा, बोलूंगा तो यही बोलूंगा वरना जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। इस तरह की जो ना वरना 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 ये लफ्ज वरना जो है ना ये आपकी जिंदगी को कहीं का कहीं लेकर चला जाएगा। अगर ये कहीं उसूली है तो आपके लिए शायद मुफीद साबित हो जाए, लेकिन ये अगर जिद के नाम पर है तो करूंगा तो यही करूंगा वरना जिंदगी भर नहीं करूंगा, ये जो डायलॉग डिलीवरी है ना ये इंसान की जिंदगी को बहुत इफेक्ट कर देती है, कहीं का भी नहीं छोड़ती। ज्यादा अपनी नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, लचक लाएं और जहां आपको लगता है कि बोलने में बात करने में गलती हो गई है फौरन मान लें। कुछ लोगों की आदत होती है मान तो लेते हैं लेकिन बड़ी जिद बहस के बाद मानते हैं, बाप रे बाप ऐसा तंग करते हैं ऐसा तंग करते हैं, यानी आधे पौने घंटे के बाद फाइनल तो ठीक है ना ये हो गया तो अब क्या करना है। अरे भैया क्या करना है, नहीं ये जो हो गया यही तो 10 मिनट पहले बोलना था आपको, ये हो गया अब क्यों बोल रहे हैं आप। जिद्दी आदमी अपने किरदार को बर्बाद करता है, जिद्दी आदमी अपनी कंपनी बर्बाद करता है, जिद्दी आदमी अपने घर को बर्बाद करता है, जिद्दी आदमी अपनी जिंदगी को उजाड़ कर रख देता है। इसलिए अपनी तबीयत में जिद पैदा करने के बजाय लचक पैदा करें और अपने आप को रब की रजा के सिपुर्द कर दें कि मेरे लिए जो मेरा रब चाहेगा बेहतर ही चाहेगा और मैं अपनी जिंदगी अपने रब की रजा के मुताबिक लाऊंगा। अल्लाह पाक ने चाहा तो जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी और आपको नुकसान जिंदगी में कम से कम होगा। अगर जिद में रहेंगे तो वही इस्तीफा चला जाएगा। ज्यादातर घर जो टूटे हैं चाहे औरत ने खुला ली है या मर्द ने तलाक दी है, आपको इसमें मेजोरिटी जो रीजन निकलेगा वो जिद निकलेगी। जो बच्चे घर छोड़कर चले गए जिद की वजह से, जो अपने बच्चों को घर से निकाल चुके जिद की वजह से, जिनकी नौकरियां चली गई इनमें तादाद जिद की वजह से है, और जिनके बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए इनमें एक वजह जिद होती है। मैं ना मानो एक जुमला है अरबी का, एक दो वर्ड है ला नुसल्लिमु, हम नहीं मानते। अभी हम नहीं मानते का जो नेचर है ना ये बड़ा अजीब नेचर है। ज्यादा आपके अंदर अगर ये नेचर है तो उसको काइंडली चेंज करें, और अगर आपका वास्ता ही इस नेचर वालों से है तो अपनी शफकत से प्यार से मोहब्बत से और दलील के साथ मुदल्लल अंदाज को बदलने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको बेजा जिद से महफूज रखे। اجازت دیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا, تجربات کی دنیا.